आठ नंबर का प्रातः क्लास दूसरे पेज के मध्यार्ध पर वाणी चल रही थी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, राजा ही न कौरवों को है न पांडवों को है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे क्योंकि ताज नहीं है। ताज मन दो प्रकार की ताज, एक प्योरिटी का ताज और दूसरा स्थूल ताज। वहाँ स्थूल ताज मिलता है किस आधार पर? यहाँ की जिम्मेवारी जो जितनी उठाता है ब्राह्मण परिवार में, यज्ञ की जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है उतना बड़ा ताज मिलता है स्थूल रूप में। और प्योरिटी का ताज किस आधार पर मिलता है? जो जितना यहाँ पवित्र रहेगा उतना वहाँ प्योरिटी का ताज मिलेगा। अगर पवित्रता का छेद होगा तो प्योरिटी का ताज भी नहीं मिलता, क्योंकि मनन चिंतन चल न सके। मनन चिंतन करने से ही फिर ज्ञान की लाइट आती है। तो वहाँ दोनों ताज हैं और यहाँ कोई ताज नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। ये भी अश्रित सिद्ध करके बताना है क्या कि पहले दोनों प्रकार के ताज थे। अच्छी सिद्ध करके बतलाने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ दूसरी दुनिया में द्वापर कलयुग में सत्युग त्रेता में तो थे डबल सिर ताज। शूटिंग की बात भी है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब शूटिंग थी सत्युग त्रेता स्वर्ग की तो दोनों ही ताज थे। और जब देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा नारकीय शूटिंग होती है तो दोनों ताज उड़ जाते हैं। न यज्ञ की पवित्रता के प्रति जिम्मेवारी का ताज रह जाता और न ज्ञान की लाइट रह जाती है। बस जैसे ब्राह्मण गीता पाठ करते हैं ऐसे गीता पाठ करना मात्र रह जाता है। तो अच्छी रीति से जिक्र के ये बतलाना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वही अच्छी रीति समझा सकेंगे, नहीं तो फिर दूसरों को भी समझा नहीं सकेंगे। ब्रह्मा परिचार की बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाना होता है क्या कि ब्रह्मा कौन है और विष्णु का असली रूप कौन सा है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मीनारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण का बाप भी राजा हो सकता है, कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ है। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे, राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम नहीं है, जो कृष्ण का बाप है नाम नहीं है। कहाँ शास्त्रों में कृष्ण के बाप का नाम क्यों नहीं है? कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम है तो कौन से कृष्ण का नाम है? सचिव की कृष्ण का, सचिव के कृष्ण का कोई नाम नहीं है। जो नाम है भी शास्त्रों में वो वास्तव में संगम युग में जो पार्ट बजाया है द्वापर युग शूटिंग की प्रत्यक्षता के समय, जिस शूटिंग पीरियड में महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध भी होता है ब्राह्मणों की दुनिया में, उसी की यादगार कृष्ण की यादगार है। तो उस कृष्ण के माँ बाप का उतना ज्ञान गहन नहीं है। कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं इस बात के, कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनते हैं। संगम की शूटिंग पीरियड की बात है कि सचिव की बात है? संगम भी कृष्ण का ही शास्त्रों में गायन है, सचिव भी कृष्ण का तो कोई गायन ही नहीं। वही ब्रह्मा की सोल अपना शरीर छोड़ करके जब किसी ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके पहले गर्भ में ये पार्ट बजाती है, फिर प्रत्यक्ष होकर के जन्म लेकर के पार्ट बजाती है, यानी प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है उस आत्मा का। ब्राह्मण परिवार में ही कुछ विशेष आत्माएं जो सूर्यवंशी घराने की होती हैं, तो नजदीक परिवार वाले होंगे वो परिवार जन पहले पहचानेंगे جو دور کے ہوں گے وہ بعد میں پہچانیں گے. تو نمبر وار پہچان ہوتی ہے کس کی؟ سنگم بھی کرشن کی پرتیکشتا کی. پیریڈ کون سا ہوگا؟ کرشن جنم کا. کیونکہ کرشن جنم کی تھی تاریخ سب نوٹ کی ہوئی ہے. مرلیم بولا ہے راتری میں کرشن جنم بھی مناتے ہیں تو راتری میں شیوراتری بھی مناتے ہیں. جیسے کرشن راتری اور شیوراتری کو ایک کر دیا ہے تو کون سا پیریڈ ہے؟ باپ بچے کے دوارا ہی پرتیکش ہوتے ہیں. ایسے تو باپ کا پرتیکشتا ورس 76 اویتواڑی میں ہی گھوشت کیا باپ دادا نے. لیکن باپ سوئم سوئم کو پرتیکش نہیں کر سکتا. باپ کا ورودھ ہے, وائدہ ہے فادر سوز سنس. جو پہلے نمبر کا بچہ ہے باپ کا, اس کرشن بچے کو پہلے پرتیکش ہونے دو, اس کے تھرو پھر باپ کی پرتیکشتا ہو. تو کرشن والی سول کلیوگ کے انتم جنم میں جب برہما کا پارٹ ادا کرتی ہے, ٹائٹل دھاری برہما, پرجا پتا برہما, ماتا پتا دونوں کا ٹائٹل بچے کے اوپر جاتا ہے, تو وہی کرشن بچہ ارتھات برہما کی سول شریر چھوڑنے کے بعد, اس دور شریر چھوڑنے سے پوری آئے پوری نہیں ہوتی ہے. برہما کی آئے جو گائی ہوئی ہے وہ استھول شریر کی نہیں گائی ہوئی. استھول شریر اور سوکشم شریر دونوں کی آئے جوڑ کر کے پھر 100 ورس کی آئے بنتی. تو شاستر میں بھی لکھا ہے برہما 100 ورس کی آئے میں ختم ہو جاتا ہے. مرلی میں بھی بولا ہے مرتیہ لوک میں برہما کی آئے پوری ہوتی. برہما مرتیہ لوک میں 100 ورس کی آئے میں ختم ہو جاتا. تو جب 100 ورس کی آئے برہما کی پوری ہوگی تو اس کا مرتیہ لوک تو سماپت ہوا, پھر کون سا لوک شروع ہوگا؟ امر لوک. تو 100 ورس آئے پوری ہوتے ہی وہ کسی برہمن بچے کے دوارا وہ سول بیج روپی اسٹیج میں امر لوک میں پرتکش ہوتی. امر لوک کا مطلب جس لوک میں آتما امر رہتی ہے. ایک حد کا امر ہونا ہے وہ تو شریر سے جنم مرتیہ کی بات ہے, اور ایک ہے برہمنوں کی سنگمی کی دنیا میں شوٹنگ پیریڈ میں بے حد میں امر ہونا. کون سے برہمنوں کو کہا جاتا کہ مر گیا؟ بنیاد آدی میں پرویش نہیں ہوا لیکن بعد میں پھر دھیمی گتی سے پرویش شروع ہو گیا. اس کا کارن کیا ہوا؟ لوکک میں کیا ہوتا ہے, جب بچہ جنم لیتا ہے تو پہلے تو گرب میں ہوتا ہے, پھر جب باہر آتا ہے تو بھی اتنی چیتنیتا میں نہیں ہوتا, لیکن تھوڑے ہی سمے کے بعد اس بچے کو ہم کبھی روتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں. کوئی ہنساتا یا رلاتا نہیں ہے. ہم اس کو کتنا بھی ہنسانے کی کوشش کریں یا اس کو کتنا بھی وکرال روپ دکھا کر کے رلانے کی کوشش کریں, وہ نہیں ہنسے گا روئے گا. لیکن اپنے آپ کبھی کبھی روتا ہے, کبھی کبھی ہنستا ہے. تو کون سی اسمتی میں چلا جاتا ہے؟ پورجن کی اسمتی میں چلا جاتا ہے. 3-4 ورس تک جب تک بچے کی سہسوا اوستھا رہتی ہے تب تک ایسا ہوتا ہے. تو ایسے ہی وہ کرشن کی سول بھی اگر گلیار دادی کے تھرو پور جنم کا سوکھم شریر کا پارٹ بجا رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اس آتما کو تب تک یہ پارٹ بجانا ہے جب تک کہ گیان سوری پورا ادے نہیں ہو جاتا. ایک طرف سوری کی پرتکش ہونا اور دوسری طرف چندرما کا است ہونا, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. اگر یہ ساتھ ساتھ نہ ہو تو جن بچوں کو ادھر شردھا وشواس بیٹھی ہوئی ہے بیسک نالج کے اوپر, ان کی بھی شردھا وشواس اکھڑ جائے تو کیا ہوا سارا کام بیکار ہو جائے. اس لیے یہ ڈراما بنا ہوا ہے کہ ایک طرف کرشن بچے کے دوارا وہ گیان سوری پرتیکش ہوتا ہونا شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ چندرما است ہوتا ہے. تو کرشن کا جنم 88-89 میں جب پرتیکشتا ہوتی ہے تو جیسے بجلی سی کون لے جاتی ہے. کہاں بجلی سی کون دے گی؟ باہر کی دنیا میں. جب بجلی کونتی ہے تو تھوڑے سمے کے لیے روشنی ہی روشنی ہو جاتی. سمپورنتا ورس منایا گیا 77, تو وہ سمپورنتا ورس میں 12 ورس اور ایڈ کر دیے جائیں تب 88 آتا ہے. تریتا یوگ شوٹنگ کا پیریڈ तो थिएटर की शूटिंग का जब अंत होता है 88 89 और द्वापर युग की शूटिंग का जब आदि होता है तो कृष्ण की प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। इसलिए शास्त्र में कृष्ण को कौन से युग में डाल दिया? द्वापर युग में डाल दिया। द्वापर में ही महाभारी महाभारत युद्ध दिखाया जाता है। तो द्वापर युग में भी जैसे षष्ठी चक्र में बताया गया है शूटिंग पीरियड में हर युग की चार अवस्थाएं होती है, तो द्वापर युग की शूटिंग की भी चार अवस्थाएं, सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में इतना संघर्ष सामने नहीं आता ब्राह्मणों की दुनिया, लेकिन उसके बाद संघर्ष तीखा हो जाता है। 88 89 90 91 के बाद जो अगला समय है 94 तक का, वो ब्राह्मणों की दुनिया में संघर्ष का पीरियड होता है। पांडव तो खुशी में रहते हैं क्योंकि उनको तो पंडा पाप मिल जाता है कृष्ण के थ्रू, तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शिव है, सब भगवान मिलकर के एक हो जाते हैं क्योंकि एक शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी कौरव पांडवों की बुद्धि में टेंशन आ जाता है। ये प्रैक्टिकल बातें अगर समझ में आती हैं तो ज्ञान सच्चा है, नहीं तो ज्ञान भी झूठा हो जाता है। तो कौरव और पांडवों को टेंशन होता है, पांडवों को टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उनमें भी कुछ न कुछ कौरव और यादवों का संघ का रंग लगा हुआ है। दो बोटों पर नाव, दो पैर, दो बोटों पर पांव रखा हुआ है, एक बोट पर उनका पांव नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो कृष्ण जन्म के बाद 3-4 वर्ष के बाद राधा का जन्म गाया हुआ है, राधा चंद्रवंश की। चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा जो पूर्व जन्म का था, उस ज्ञान चंद्रमा के कुल में पलने वाली, उन परंपराओं पर चलने के लिए मजबूर, क्योंकि बच्चा तो माँ बाप के अधीन, माँ बाप के कुल के अधीन होता है, जहाँ पलता है वहाँ की परंपराएं बच्चे को अपनानी पड़ती, तो वो राधा बच्ची चंद्रवंश से प्रत्यक्ष होती है। उस परिवार के लोग पहले उसे पहचानते, जैसे कृष्ण का जन्म सूर्यवंश में, सूर्य अर्थात ज्ञान सूर्य परमात्मा की वाणियों पर चलने वाला परिवार, और किसी देहधारी के डायरेक्शन को मानने वाला वो परिवार नहीं हो सकता। तो इस तरह सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का फाउंडेशन ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में पड़ता है। ये जो फाउंडेशन पड़ता है इससे एक समस्या पैदा हो जाती है कि सतयुगी नई दुनिया में तो एक कुल, एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म होगा, एक मत होगा, यहाँ दो मतों का फाउंडेशन क्यों पड़ रहा है? तो उसका समाधान तब होता है जब कृष्ण सिंगल से डबल हो जाता। भारतीय परंपरा में ये गायन है कि कोई अनुष्ठान तब तक सफल नहीं होता जब तक स्त्री पुरुष दोनों की गांठ नहीं जोड़ी जाती। तो ये है संस्कारों की गांठ, संस्कारों का मेल। इस संसार में भी कोई पहला युगल तैयार होगा जहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होगी, परिवार की इकाई से, कुटुंब की इकाई से। पहले एक घर सुधरेगा फिर दुनिया सुधरेगी, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे नहीं कि दुनिया में एकदम स्वर्ग आ जाएगा। पहले राधा कृष्ण बनाम शंकर पार्वती, बनाम लक्ष्मी नारायण, जो नरसे नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनके संस्कार मिलकर के एक हों, वो विष्णु फरिश्ता स्वरूप बने, फिर एक एक करके दूसरे दूसरे परिवार भी सुख शांति में बनते चले जाते। होगा सब ब्राह्मणों की दुनिया से ही शुरुआत, बाहर से नहीं होना है। तो इस तरह कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्षता तो बाप की होती है, लेकिन कृष्ण को प्रत्यक्ष करने के जो निमित्त बनता है वो भी तो कोई ब्राह्मण होगा। जो कृष्ण को कृष्ण का रूप देने के लिए प्रत्यक्ष बनने, प्रत्यक्षता की भेड़ी बजाए, माँ बाप के घर में बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप घर में बाजे बजवाते हैं। यहाँ कौन से बाजे होते हैं? ये है ज्ञान के बाजे। तो बाप विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है क्या? तो बच्चा किसके द्वारा प्रत्यक्ष होगा? बच्चे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। सन सो फादर, फादर सो सन, तो जब प्रत्यक्षता होगी कृष्ण बच्चे की तो निमित्त कौन बनेगी? विदेशी। कोई विदेशी बच्चे है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। बाहर की दुनिया की बात हो तो ये तर्क संगत साबित नहीं होती। यानी जो ज्ञानी बच्चे हैं, परमात्मा बाप को पहचानने वाले बच्चे हैं, उनमें ही दूसरे देशों के फाउंडेशन डालने वाले भी बच्चे हैं, दूसरे धर्म का फाउंडेशन डालने वाले भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की नौ कुरियां गाई जाती हैं, नौ गोत्र गाए जाते हैं, नौ ऋषियों से वो नौ गोत्र चले। भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता चली आ रही है अभी तक, तो वो नौ गोत्र कहाँ से आए? चली आ रही है। ऋषि है, देवर्षि है, महर्षि है, जिन्होंने ये तपस्या की है, है वो नंबरवार। जैसे नौ धर्म है दुनिया के जो राजा ही प्राप्त करते हैं, ऐसे ही उन नौ धर्मों के मुखिया जो है ब्राह्मण वर्ग में, वो भी उनके मुख्य हैं। और वो मुख्य जड़ों में मुख्य बीज, नौ प्रकार के बीज वही नवरत्न गाए जाते हैं। नौ ऋषि हैं, नौ विशेष आत्माएं हैं जिनसे ये नौ गोत्र चलते हैं। तो उन गोत्रों में कोई एक ऐसी भी आत्मा है जो सेकंड नंबर के धर्म पिता का आधार या बीज बनने वाली आत्मा होती है। इसलिए यहां बोला कि सेकंड क्लास पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के लिए। तो राम बाप की प्रत्यक्षता होती है कृष्ण के द्वारा, चंद्रवंशी कृष्ण के द्वारा, तो वो तो दोनों मिलकर के एक हो गए। जैसे मुरली ने बोला श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही चीज, वो जगत का नाथ, वो श्रेष्ठ मान्य देवताओं का नाथ, दोनों एक ही शरीर में प्रवेश होकर के कार्य करते हैं, इसलिए है एक ही चीज। लेकिन अंतर क्या हो जाता है? अंतर उनके कार्य का हो जाता है। एक ने तो ऐसा कार्य किया जिस कर्म को देख करके सब ब्राह्मण अगर फॉलो करेंगे तो उनका जीवन स्वर्ग समान बनेगा, इसलिए बाबा ने कहा ये करणहार पार्ट है ब्रह्मा का। तुम बच्चों को हमेशा कर्मों में अगर फॉलो करना है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है, शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि करणहार पार्ट को फॉलो करोगे तो अच्छे और श्रेष्ठ पार्ट को फॉलो करने से ऐसा पद बनेगा, श्रेष्ठ पद बनेगा। तो परमात्मा शिव का ब्रह्मा के द्वारा करणहार का पार्ट हुआ, फिर लास्ट में होता है करावनहार का पार्ट। जब बच्चे उस कार्य को सही रीति से प्यार से नहीं कर पाते तो परमात्मा बाप को फिर टेढ़ा रूप धारण करना पड़ता है, और वो टेढ़ा रूप है बाघ का रूप, करावनहार का रूप। खुद करे या न करे लेकिन बच्चों से जरूर कराएगा, ऐसा सख्त रूप धारण करता है, सख्त पार्ट बजाता है। तो राम और कृष्ण दोनों मिलकर के ये तो एक ही स्वरूप हो गए, एक ही व्यक्तित्व हो गए, जिनके द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष, जिसके द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष होता है जिस रूप के द्वारा। लेकिन उसको प्रत्यक्ष करने के निमित्त कोई तो ब्राह्मण बनेगा, तो वो कौन सा ब्राह्मण बनेगा? ये वही ब्राह्मण निमित्त बनते हैं जो इस्लाम धर्म के आधार मूर्ति या बीज रूप बनते हैं। क्योंकि पहले तो बीज रूप आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी, बीज ही पावरफुल होते हैं। तो बीज रूप आत्माओं में जो इस्लाम धर्म का विदेशी बीज है, जो 76 में आज ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने के बाद संकल्प सृष्टि का दूसरा बच्चा गिना जाता है। संकल्पी सृष्टि जब होती है तो ब्रह्मा के चार पुत्र पैदा होते हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, अव्यक्तवाणी, ये नाम बोला हुआ है सनत कुमार का। तो चार पांच पांच छह छह वर्ष के पुत्र दिखाए जाते हैं ब्रह्मा के, उनमें से एक सनत कुमार सबसे ज्यादा योगीश्वर दिखाया गया है, ज्ञानी दिखाया गया है। लेकिन तीन और भाई भी हैं जो अन्य तीन मुख्य धर्मों के बीज बनते हैं। इनको रामायण शास्त्र में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दे दिए गए। तो राम के बाद जो छोटा रूप है छोटे भाई का, वो भरत का रूप है। वो भरत वाली शोली इस्लाम धर्म का बीज है। चार मुख्य धर्म बताए हैं बाबा ने, देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो देवता धर्म का सारा भार किसके ऊपर पड़ता है? देवता धर्म का सारा भार प्रत्यक्षता करने के लिए पड़ता है इस्लाम धर्म के ऊपर, क्योंकि इस्लाम धर्म ही देवता धर्म को नष्ट करने के पहले पहले निमित्त बना। तो हिसाब किताब पूरा होना चाहिए कि नहीं है? जरूर होना चाहिए। शूटिंग पीरियड में भी जब एडवांस पार्टी शुरू हुई 76 में, तो ये विदेशी बीज रूप ही उस बाप को प्रत्यक्ष करने के दिल्ली में प्रत्यक्ष निमित्त बने, सबसे जास्ती सहयोग देकर। और वही फिर जब कैसे भी शूटिंग में तीसरी अवस्था द्वापर युगी अवस्था रजो प्रधान शुरू होती है, तो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं और उस बाप को राजधानी में गुप्त कर लेते हैं। तो द्वापर युग के पाप का तो कोई पाप नहीं बनता, जो 1200 वर्ष का द्वापर युग है, क्योंकि वहां पे एक गुना पाप चढ़ता है। और यहाँ शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड में अगर वही पाप जान लेने के बाद भी किया जाए, पाप को पहचानने के बाद भी अगर कोई पाप किया जाए, पहले भगवान माने कि हमें भगवान बाप मिल गया और ये भगवान का रूप है, और फिर बाद में उसकी ग्लानी करे, तो उसका पाप एक गुना नहीं बनेगा, कितना बनता है? 100 गुना भी नहीं, 100 गुना बनता था बेसिक नॉलेज में। अब एडवांस नॉलेज में 1000 गुना और लाख गुना मल्टीप्लाई होता जाता है। जैसे जैसे ज्ञान की गुह्य गति बढ़ती जाती, वैसे वैसे कर्मों की गुह्य गति का हिसाब किताब भी अनेक गुना बनता है। तो वही आत्मा है जो बाप को, अभिषेकवाणी में बोला था विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, और बोलने के साथ साथ विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष करना शुरू कर दिया 77। वही बाप उन्हीं विदेशियों के द्वारा गुप्त किया गया। तो जो पाप बन गया उनका, उस पाप का मोक्ष भी उन्हीं को करना पड़े। जो खराब कर्म करेगा तो खराब कर्म करने का उल्टा भी उसको ही उसको करना पड़ेगा, नहीं तो हिसाब किताब पूरा नहीं हो सकता। तो वही आत्मा इस्लाम धर्म की जो बीज बनती, जो परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने में सबसे जास्ती सहयोगी बनी, पर सबसे जास्ती विपरीत बुद्धि बनी, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। और क्या बोला है? सदगुरु निंदक थौर न पावे, यानी परमात्मा पाप के पास उनको थौर नहीं मिलेगा, उनको फिर दूर रह करके ही ज्ञान लेना पड़े, दूसरों से लेना पड़े। मुसलमान भीख मांगेंगे, ऐसे मुरली में बोला हुआ है, कयामत के समय तो जरूर उन्होंने परमात्मा को ठुकराया भी होगा, इसलिए उनको भीख मांगनी पड़ती है। तो वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा ही त्रेता युग की शूटिंग की पूर्ति होने पर निमित्त बनती है परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के। 88-89 में जो विदेशी निमित्त बने, वो कोई बाहर की विदेशियों की बात नहीं है। अव्यक्तवाणी में बाबा ने दक्षिण भारत के लोगों को ही, दक्षिण भारत को ही भारत का विदेश कहा है। उनकी भाषा भी दूसरी, उनकी परंपराएं भी दूसरी, उनका मत भी थोड़ा अंतर पड़ जाता है, खान पान भी दूसरा। तो उन विदेशियों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। उनका बीज कौन होता है? वो दक्षिण भारत में बीज डालने का निमित्त वो इस्लाम धर्म का बीज बनता है। कौन सा? जो 76 में बाप को प्रत्यक्ष करने में सबसे जाति सहयोगी बना था और सबसे जाति विरोधी भी बना। तो वही बीज फिर उस बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, अर्थात कृष्ण की सोल को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन जाता है। तो बाप कौन हुआ? कृष्ण को आप बाप कौन हुआ? संगम युग में बाप तो पावरफुल होना चाहिए। बाप रचयिता होता है, रचयिता रचना से पावरफुल होना चाहिए। तो उसका ऊंचा पद होना चाहिए, नीचे पद होना चाहिए, फर्स्ट क्लास पद होना चाहिए, सेकंड क्लास पद होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। इसलिए भैया ये क्यों बोला?
कि बाप का पद ऊंच नहीं कहेंगे। कृष्ण का कितना नाम वाला है, बाप राजा का नाम नहीं है, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने जो पवित्रता की जिम्मेवारी लेनी चाहिए वो पवित्रता की जिम्मेवारी धारण नहीं की। परिवार में कैसे पवित्र रहा जाता है? जो उच्च कुल के परिवार होते हैं उनमें भाई बहन का स्नेह क्या होता है, उनका रिश्ता क्या होता है, कैसे आपस में निर्वाह करते हैं? भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता क्या होता है तो वो समझना पड़े। कोई बच्चा ऐसा होता है कुल में कपूत निकल पड़ता है, बाप का नाम बाला करने के और ही बदनाम करने वाला बन पड़ता है, खून को खराब करने वाला बन पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो हैं फिर फर्स्ट क्लास पद कैसे पाएंगे? शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं। इस्लाम धर्म का बीज होगा वो भी बच्चा है, देवता धर्म का बीज होगा वो भी बच्चा है, लेकिन कर्मों की गुणगत के आधार पर ये नंबर बन गया। सेवा तो ऊंची की, जो परमात्मा शिव का आधार बनने वाली आत्मा स्वयं परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, वो कार्य उस आत्मा ने किया। लेकिन अंतर क्या पड़ा? बहुत सेवा कोई करे, चाहे वाचा की सेवा करे चाहे कर्मण्य की सेवा, लेकिन अगर पवित्रता को नहीं धारण किया सेवा करते समय तो वो सारी सेवा व्यर्थ हो जाती। तो इसलिए बोला कि बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने के लिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण की आत्मा से हुआ ऊंच पड़ा हुआ है। कौन? कृष्ण का बाप। कृष्ण का बाप ऊंच पढ़ाई नहीं पढ़ी। यहाँ पढ़ाई कौन सी है? पवित्रता की ही तो पढ़ाई है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना यही तो पढ़ाई है। तो वो पढ़ाई उसने ऊंची नहीं पढ़ पाई, उस पढ़ाई के गुह्य राज को वो बच्चा पहचान नहीं सका। इस्लाम धर्म का बीज तो ऊंच पढ़ा हुआ नहीं है। कृष्ण ही तो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम गुम हो जाता है। किसके बाप का नाम? कृष्ण के बाप का नाम गुम हो जाता है जरूर ब्राह्मण। कौन? कृष्ण का बाप। कृष्ण का बाप कौन था? कृष्ण के तो दो बाप शास्त्रों में गाए गए हैं। कौन कौन से? एक जन्म देने वाला वसुदेव, वसु माने धन और देव माने देने वाला। वो तो दिखाते हैं किस जगह उसने जन्म दिया, जेल में, विकारों की जेल में उसने जन्म दिया। और दूसरा बाप कौन दिखाते हैं? नंद। तो दोनों में वास्तविक बाप कौन सा था? वसुदेव वास्तविक बाप था। वो कोई वास्तविक बाप थोड़े ही था। कौन? नंद बाबा। नंद माने आनंद देने वाला बाबा। तो आनंद देने वाला बाबा कौन है वो तो सब जानते हैं। वो कौन है? वो तो शिव बाबा ही हो सकता है। बाकी दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा को आनंद इस नरक की दुनिया में दे नहीं सकती। ये तो अंतरूनी आनंद है, अतीन्द्रिय सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख सिवाय इंद्रियों से परे रहने वाले के और कोई दे नहीं सकता। तो नंद बाबा ने गांवड़े में रह करके उसकी पालना की। तो उसके अपवित्र होने की बात नहीं है नंद बाबा की, बात किसकी है? नंद बाबा को भी कहते हैं कौन से कुल का था? यादव कुल का। शंकर को कौन से कुल का हेड बताते हैं बाबा? यादवों के कुल का हेड है शंकर। हा हा, क्या बम बम क्या करवाता है? बम फोड़वाता है। तो यादवों का हेड हुआ ना। तो बाप का नाम गुम हो जाता है वो भी ब्राह्मण, यानी वसुदेव भी है ब्राह्मण। न मानो तो सीढ़ी के चित्र में देख लो, सीढ़ी के चित्र में बैगर टू प्रिंस बनने वाले उस संगमगी कृष्ण को, जो फुल बैगर बन जाता है, उसको भीख देने वाले दो विदेशी खड़े हुए हैं, दो पतलून वाले। तो उनमें एक है इस्लामी और एक है क्रिश्चियन। तो जो इस्लामी है उनके लिए बाबा ने बोला ये इस्लामी पहले मरेंगे। کیا اسکول میں بھی اسلامیوں کی دنیا میں بہت گڑبڑ دیکھی جا رہی ہے باہر کی دنیا میں, اور براہمنوں کی دنیا میں سب سے جاتی مینٹل ٹینشن اسلامیوں کے اندر ہی چل رہا ہے. ان کا جو ہیڈ ہے ان کے اندر ہی سب سے جاتی ٹینشن چلے گا. باہر سے بھلے پرسن دکھائی پڑے کیونکہ وہ ہوتی ہے الپکال کی پرسنتا. جیسے کوئی شراب پی لیتا ہے تو جب تک شراب کا نشہ رہے گا ہم سے بڑا کوئی نہیں, تو ایسے یہ آنکھوں کی شراب ہے. یہ آنکھوں کی شراب بھی براہمنوں کی دنیا میں اسلامی ہی سب سے جاستی پیتے ہیں, ہے وہ بھی یادہ کھل کے. تو ان کو جو شراب کا الپکال کا نشہ ہے وہ ان کو ڈاؤن کیے ہوئے یا اونچا چڑھائے ہوئے ہے الٹا نشہ. باقی وہ جب وہ نشہ اترے گا تو وہ اپنی استھتی کو پہچان لیں گے. تو ہے براہمن وہ ضرور, کون کرشن کا باپ جس نے دکشن بھارت میں جین کا بیج ڈال کر کے ان ودیشیوں کو جگا دیا. کیونکہ ودیشیوں کا بیج ہے. دکشن بھارت میں دو پردیش تین پردیش آتے ہیں, کون کون سے؟ کرناٹک اور آندھر پردیش. کرناٹک سے آندھر پردیش نکلا, باقی مدراس اور کیرل بھی ہے چھوٹے چھوٹے. تو پڑھائی میں کرشن سے کم ہے اس کا باپ. پوترتا کی پڑھائی میں کرشن نے زیادہ پڑھائی پڑھی اور اس کے باپ نے کم پڑھائی پڑھی. کرشن کی آتما کی پڑھائی اپنے باپ سے اونچ تھی. کیا پڑھائی اپنے باپ سے اونچ تھی؟ پڑھانے والا کون تھا دونوں کو؟ جو یہاں پہلے پہلی پڑھائی پڑھتے ہیں ستو پردھان اسٹیج کی پڑھائی پڑھتے ہیں اونچے سے اونچی پڑھائی پڑھتے ہیں وہ وہاں بھی پہلے پہلے آ گئی. نمبر وار تو آتے ہیں, کم بدھ والے تو دھارنا نہیں کر سکتے, نمبر وار جاتے ہیں. تم ٹرانسفر ہوتے ہو نمبر وار, تمہارا کلاس نمبر وار ٹرانسفر ہوتا ہے. مرغیوں میں کہتا ہے ٹرانسفر کلاس ہوگا تو کلاس ٹرانسفر ہوگا تو استھان بھی ٹرانسفر ہوگا, ٹیچرس بھی دوسرے ہوں گے. تو کتنی بڑی کیو ہے جو پچھاڑے میں جائیں گے نمبر وار اپنے اپنے استھان پر جا کر کے نواس کریں گے. کیا اپنی اپنی سیٹ ہوگی, سب کا استھان بنا ہوا ہے. تو یہ بڑا ونڈرفل کھیل ہے پرنتو کوئی سمجھتے نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے کانٹوں کا جنگل. کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کانٹوں کا جنگل ہے نا, کام کا کانٹا لگانے میں جن کی بدھی لگی ہوئی ہے خود بھی لگاتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی لگواتے رہتے ہیں, چاہے آنکھوں سے چاہے اندریوں سے. تو ایسے میں جن کی بدھی لگی ہوئی ہے وہ ان مہین باتوں کو سمجھ نہیں سکتے, ان کا چھید بڑا ہو گیا ہے, سب نکل جاتا ہے. ان میں رہتے ہیں جانور, کانٹوں کے جنگل میں رہتے ہیں جانور. جانوروں کی عقل بدھی کام نہیں کرتی, ایک دو کو دکھ دیتے رہتے. سب سے بڑا دکھ کون سا ہوتا ہے؟ کام کا کانٹا. وہاں تو نیچرل سکھ ہوتا ہے. کہاں؟ ستیو میں. یہاں ہے آرٹیفیشل سکھ. جو نیچرل سکھ ہوتا ہے وہ سدا کال کا ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا, اور آرٹیفیشل سکھ وہ چھڑک ہوتا ہے اندریوں کا سکھ. ریئل سکھ باقی دینے والا ہے. ستیو کے سیکنڈ جنم میں بھی وہ سکھ نہیں ملے گا, فرسٹ جنم میں بھی وہ سکھ نہیں ملے گا رادھا کرشن کو ستیو کو. کہاں ملے گا؟ سنگم میں. جب رادھا کرشن کی پرتکشتا ہو جائے سوئمبر کے بعد تو جو سنگم بھی سورگ ہوگا اس میں باپ سے جو سکھ ملے گا اتندریہ سکھ, اتنا سکھ اور کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا. وہ ہے ریئل سکھ. باقی جنموں میں سب ہے آرٹیفیشل. یہاں ہے کاغ مشتا کے سمان سکھ. کاغ مشتا کیسی ہوتی ہے؟ گندی. کوا جو ہے گند کھاتا ہے اور اس گند میں سے اس کی نسیں ناڑیاں رس کھینچتی ہیں. پھر اس کا جو بچا ہوا ہوتا ہے حصہ کچرا, اس کو کہتے ہیں کاغ مشتا. اس کاغ مشتا سمان سکھ کو آج منشی بھوگ رہے ہیں. تو اس میں کیا طاقت ہوگی؟ کتنی دیر چلے گا؟
बहुत थोड़ा, सुख भोगा न भोगा दोनों बराबर हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है, कहते हैं बाबा क्या करें, माया के तूफान बहुत आते हैं। अब तक भी एडवांस नॉलेज लेने आते हैं और फिर ऐसे ऐसे पोता में लिख करके देते हैं। बहुत तूफान आते हैं, माया हमको उलझा देती है, तो क्या कहा जाएगा, तकदीर बना कर आई हूँ, ये कहेंगे कि तकदीर बना के आई हूँ। 63 जन्म में जरूर तुमने खराब कर्म किए हैं, तब तुम्हारी ऐसी तकदीर बनी कि प्रत्यक्षता का समय आ गया और तुम अभी तक ये बात ये कंप्लेंट कर रहे हो कि हमारी ऐसी अवस्था हो रही है। माया के तूफान बहुत आते हैं, माया हमको उलझा देती है, दुख की फीलिंग फिर बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है, क्या तुमने कोई ऐसे कर्म किए हैं 63 जन्मों में, वो बैठ करके तुम भोगो, छोटा कर्म भोग नहीं है कोई, बड़ा कर्म भोग वो यहाँ भी प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या मधुबन में आकर के अगर मधुबन के वाइब्रेशन खराब हो रहे हैं तो समझ लो आने वालों में जरूर कोई बड़ा भारी डिफेक्ट है, जो उनके आने से ऐसी अवस्था खराब हो रही है। अच्छी और श्रेष्ठ आत्माएं आएंगी तो अवस्था भी अच्छी बनेगी, इसलिए बाबा ने कहा संग उनका करना चाहिए जो जो अवस्था को ऊंचा चढ़ाए, उनका संग करना चाहिए। मधुबन में तो सबकी बुद्धि लगी रहती है, मधुबन के लिए क्या बोला है, मधुबन के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते, तो पहले तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में फैलेंगे, वहां असर करेंगे, फिर बाहर की दुनिया में असर करेंगे। तो मधुबन का वाइब्रेशन बनाने की जो सर्विस है वो कितनी ऊंची सर्विस है, ये बहुत बड़ी सर्विस है। तो बाप कहेंगे ये तुम्हारा कर्म भोग है, जो बाप के बच्चे बनकर के भी तुमको अब दुख की फीलिंग आ रही है, जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। क्या एक तरफ निश्चय पत्र लिख करके दे रहे हो कि हमको बाप मिल गया, अब दूसरी तरफ पोता मेल लिख करके दे रहे हो कि हमको दुख की फीलिंग आ रही है, तो फाउंडेशन तुम्हारा कैसा हुआ है? अरे फाउंडेशन टाइम ही तुम्हारा खराब हो गया, ये पहला पहला जन्म है फाउंडेशन का, यही तुम्हारा खराब हो गया तो और जन्म तुम्हारे कैसे होंगे? तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे अब योग बल से चुकती करो, चुकतू करो, अगर योग बल नहीं होगा तो फिर मोचरा खा करके चुकतू करना पड़ेगा। क्या खा करके? मोचरा। मोचरा क्या होता है, है? सजा, क्या जूत पड़ेंगे, मोची जूत डालने के लिए क्या मोची आएगा, चमड़ा कोश, मोची देखा है वो का क्या काम करता है, वो जूते गाँटने का काम करता है, वो जूता लेके पिलेगा क्या? मोचरा खा करके चुपचू करना पड़ेगा, मोचरा और फिर मिली मानी, मानी मन थोड़ा सा बाद में मान मर्तबा मिल गया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत खराब बात है। जो सजा खा करके धर्मराज की और फिर तुमने ये प्राप्ति की, मोचरा और मानी अच्छी बात नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। क्या मोची भी ऐसे ही नहीं जूत मारेगा, मोची होते हैं सड़कों में बैठे रहते हैं, कैसा उनकी वेशभूषा होती है, वेशभूषा जैसे जूते होते हैं वैसे उनकी वेशभूषा होगी, तो धर्मराज का रूप कैसा होगा, काला कलूटा बैंगन लूटा बैसे में सवार, देखते ही हालत खराब हो जाएगी। तो जिसके देखने से ही हालत खराब हो उसका जूत पड़े तो कितनी हालत खराब होगी, ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है, वह तो ड्रामा अनुसार जब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं, कौन है प्रजावर्ग की आत्मा, राजवर्ग की रोज राजघराने की आत्मा 16108 है وہ تو پھر بھی کم سجائے کھائیں گی, لیکن پرجا والی آتما ہے تو وہ تو ان کی تو عادت پڑی ہوئی ہے بھری ڈھونے کی. کماتے رہو اور کمائے کمائے کے آدھا آدھا میں جام آدھا میں رہی ہے. کیا مطلب ہوا کہ جتنی راجیہ کی کمائی ہوتی ہے اس میں سے آدھا تو راجا رانی کا پریوار کھا جاتا ہے, ان کا پریوار پلتا ہے, اور آدھے میں ساری پرجا پلتی ہے. تو پرجا کو تو ڈراما انوسار سب گرو جیل میں بہت سجائیں کھاتے ہیں, آتمائیں بھٹکتی تھی بہت, کوئی کوئی آتما بہت نقصان کرتی ہے, کوئی میں اشدھ آتما کا پرویش ہوتا ہے. تو نئی دنیا میں یہ باتیں نہیں ہوتی. کیا کہا؟ ہاں نئی دنیا کون سی؟ سنگ میں بھی نئی دنیا میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی کہ مدھوبن میں آ کر کے پھر کوئی سول آ کر کے پرویش کرے اور پھر اس کو سزا دلانے کی نمت بن جائے. یہ وہاں بھی ہوتا ہے تو سول کا پرویش یہاں بھی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ جہاں کی شدھ وائبریشن ہوں گے وہاں ایون سول پرویش کرے گی؟ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اشدھ آتما کا پرویش ہوتا ہے کہاں؟ ہاں نئی دنیا میں نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ پرانی دنیا میں. ابھی تم پرشارتھ کرتے ہو, ہم نئی دنیا میں جائیں جہاں کوئی ایون سول پرویش کر کے دکھدائی کاری نہیں کر سکے گی. وہاں جا کر کے نئے نئے محل بنانے پڑیں گے, کائی کے اینٹوں کے, وہ تو بن رہے ہیں. وہ تو بڑے بڑے نئے محل بن رہے ہیں کروڑوں روپیہ لگائے کے, براہمنوں کی دنیا میں ہی بن رہے ہیں. تو سب تو استھاپن ہو گیا, نئی دنیا تو استھاپن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ارے نام ہی رکھے ہوئے سکھ دھام شانتی دھام. ہاں ایسے تو بھکتی مارگ میں بھی رشی کیس میں نام رکھ دیے. کیا نام رکھے ہیں بھکتی مارگ میں؟ رشی کیس میں ایک سوگاشرم بنایا ہوا ہے, بہت پرانا بنا ہوا ہے. تو سوگاشرم ہو گیا کیا؟ ایسے کوئی سوگاشرم جڑ اینٹوں کے محل بنانے سے نہیں ہو جاتے. یہ تو سنگھن روپی محل ہیں. جو سنگھن روپی ہو سوکھم بات ہے, جڑ کی بات نہیں ہے. پہلے چیتنیہ سدھرے, چیتنیہ سنگھن تیار ہو. ہاں وہ بھون کا بھونوں کا ادھاٹن اور کاروں کا ادھاٹن تو ہوتا رہتا ہے. ہاں لیکن یہ ہم پالا کار بنے شریر روپی نیروگی بنے تب بات ہے. تو وہاں جا کر کے نئے نئے محل بنانے پڑیں گے اپنے آپ, وہ بھی نہیں بنیں گے کیا؟ وہ بھی بنانے پڑیں گے. تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سنگھن روپی قلعے بنانے کا ٹائم آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا. راجاؤں کے پاس جنم لیتے ہو. کیا کہا؟ گاندھی کی آتما مری, وہ گاندھی نے شریر چھوڑا, آتما تو مرتی نہیں. گاندھی نے شریر چھوڑا, آتما نے کہاں جا کر کے جنم لیا؟ راجکوٹ میں جنم لیا. بابا نے حد کی بات بولی ہوگی یا بے حد کی؟ ضرور بے حد کی بات بولی ہوگی. جیسے اس دنیا میں گاندھی تھا کہتا تھا رام راجیہ چاہیے, اور آ کیا گیا؟ اور ہی راون راجیہ آ گیا. ہاتھ میں اٹھاتے تھے گیتا اور مکھ سے کہتے تھے پتت پاون سیتا رام. ارے گیتا میں تو کرشن کا نام ہے, پتت پاون سیتا رام کیسے ہو گئے؟ تو ایسے ہی براہمنوں کی دنیا میں بھی گاندھی جی ہیں. کیسے ہم رام راجیہ لائیں گے؟ ہم جا کر کے رام راجیہ میں راجی کریں گے. اور ہوا کیا؟ آٹھ فیل ہو گیا اور کہیں چھوڑ گئے, رام راجی نہیں آیا. اور ہی کوروں کا راجی آ گیا, کوؤں کی طرح کاؤں کاؤں بہت کرتے ہیں. کاؤ رب, رب من شور گل, شور گل بہت کرتے ہیں, لیکن کام دھام واسطو میں سکھ شانتی کی استھاپنا کا کوئی کاری نہیں ہو پاتا. تو بولا نئے نئے محل بنانے پڑیں گے, راجاؤں کے پاس جنم لیتے ہو. جنم کہاں لیتے ہو؟ کرشن کی سول نے بھی کہاں جنم لیا ہوگا؟ یعنی برہما کی سول نے بھی شریر چھوڑنے کے بعد کہاں جنم لیا ہوگا؟ ضرور
ضرور کسی راجا کے یہاں جا کر کے پالنا لیے. کوئی بڑے راجا کے یہاں جا کے جنم لیتا ہے؟ مانا اس دنیا میں تو کوئی راجا ہے نہیں, تو برہمن کی دنیا میں راجا کہاں سے آ جائیں گے؟ یہ تو بے حد کے راجاؤں کی بات ہے جنہوں نے راج یوگ سیکھ کر کے راجا کا اپنا بھاگی بنا لیا. تو راجاؤں کے پاس جنم لیتے ہو, جیسے کرشن جنم لیتے ہیں ویسے تم بھی بڑے بڑے راجاؤں کے پاس جنم لیتے ہو. پرنتو اتنے محل آدمی سب پہلے تھوڑے ہی ہوتے ہیں, یہ تو سب یہ سنگٹھن بنانے پڑے, وہ تو پھر بنانے ہی پڑتے ہیں. کون بچتے ہیں؟ جن کے پاس جنم لیتے ہیں وہ بچتے ہیں. کیا کہا؟ جن کے پاس جنم لیتے ہیں وہ بچتے ہیں. گایا ہوا ہے راجاؤں کے پاس جنم ہوتا ہے تو حد کی راجائی کی بات نہیں ہے, حد کے تاج وغیرہ کی بات نہیں ہے. تیسرا بھی کیا ہوتا ہے سو تو آگے چل کر کے دیکھنا ہے. یہ کب وانی بولی گئی؟ ابھی بولی گئی, اس سے پہلے کبھی نہیں بولی گئی. آگے چل کر کے دیکھنا ہے تو آگے ہی آگے ہوتا رہے گا. یہ وانی تو اس سمے کی ہے, کب کی؟ آج سے قریب 25 سال پہلے کی. تو اب آگے تو پورا ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. آگے چل کر کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے سو آگے چل کے دیکھنا ہے. ابھی تھوڑے ہی بابا بتائیں گے. کیا بابا ابھی نہیں بتائیں گے؟ ابھی مانا برہما کے تن سے جب بول رہے تھے اس سمے بتانے کی باتیں یہ نہیں تھی کہ کرشن کہاں جنم لے گا, کون جنم دینے والا راجا ہوگا, تمہارا جنم کہاں ہوگا, تم کیسے محل بنائیں گے. یہ تو آگے چلو پتا پڑے گا. میں اب وہ ٹائم آ گیا, وہ پھر آرٹیفیشیل ناٹک ہو جائے گا اگر ابھی بتا دے گئے. کیا برہما کے تن سے اگر یہ ساری باتیں بتائی دی ہوتی تو سب آرٹیفیشیل باتیں ہو جائیں, اس لیے بتاتے کچھ بھی نہیں. ڈراما میں بتانے کی ابھی لوز نہیں ہے. کب؟ برہما کے تن سے. باپ کہتے ہیں میں بھی پاٹداری ہوں, آگے کی باتیں پہلے سے ہی جانتا ہوتا تو بہت کچھ تم کو بتلاتا, لیکن میں بھی جانی جانن ہار نہیں ہوں. بابا انتریامی ہوتا تو پہلے سے بتاتا. باپ کہتے ہیں نہیں, ڈرامے میں جو ہوتا ہے اس کو ساتھ ہی ہو کر کے دیکھتے چلو, اور ساتھ ساتھ ریاض کی یاترا میں مست رہو. اس میں ہی فیل جاتی ہوتے ہیں, جان کبھی کم جاتی نہیں ہوتا ہے, لیکن ریاض کی یاترا کبھی بہت تیزی چلتی ہے اور کبھی بہت دھیمے چلتے ہیں. یاد کی یاترا ہی کم ہو جاتی ہوتی ہے, جان تو جو ملا ہے سو تو ہے. یاد کی یاترا میں کبھی امنگ رہتا ہے, کبھی ڈھیلا ہوتا ہے, کبھی نیچے اوپر یاترا ہوتی ہے. جان میں تم سیڑھی نہیں چڑھتے ہو, سیڑھی کاہے میں چڑھتے ہو؟ یاد سے سیڑھی چڑھتے ہو. جان کو یاترا نہیں کہا جاتا, یاد کی یاترا ہے. باپ کہتے ہیں یاد میں رہنے سے تم سیفٹی میں رہیں گے. مایا کا بار یا مایاوی استری پرشوں کا بار تمہارے اوپر نہیں ہوگا, نہیں تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. راون جب آیا سیتا کے پاس تو کون سا بیش دھارن کر کے آیا؟ سادھو کا بیش دھارن کر کے آیا. سیتا بیچاری کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے, وہ تو سمجھتی ہے بڑے اچھے رشی منی مہاراج آ گئے, انہوں نے آ کر کے مدھوبنی کے وائبریشن خراب کر دیے. تو وہ راون کمبھکرن میگھناد یہ جو آسری نام گائے ہوئے وہ ہیں کہاں کے؟ براہمنوں کی دنیا کے. ان کے چہرے کہاں پہ چھ ہوں گے؟ سب سے بڑا شیش محل کون سا ہے؟ مدھوبن ہے سب سے بڑا شیش محل, جس میں کوئی بھی آسر اپنے کو چھپا نہیں سکتا ہے. اور شیش محل تو اس میں تو ڈھیر سارے شیشے ہوتے ہیں, جدھر دیکھو ادھر شیشے ہی شیشے, لیکن ان میں بھی سب سے بڑا درپن کون سا ہوتا ہے؟ باپ ہے سب سے بڑا درپن. باپ کے سامنے کوئی بات کسی کی چھپ نہیں سکتی ہے. باپ رمتو رم ازباد بھی ہے, وہ جانتے ہوئے بھی گپت ہو جاتا ہے, انجان بھی ہو جاتا ہے. ایسے نہیں کہ جانی جانا نہار ہے, جانی جانا نہار نہیں ہے,
लेकिन चलन से, एक्ट से, दृष्टि वृत्ति से, वाइब्रेशन से बात समझ में आ जाती है। बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह अभिमान में आने से तुम बहुत धोखा मिल जाता है माया का। माया कौन होती है? माया क्या होती है? माया है तो अपने अंदर, अपने अंदर विकृति होगी तो दूसरा भी विकारी रूप धारण करके हमको आकर्षित कर सकेगा, या क्रोध में लाए सकेगा, लोभ मोह में लाए सकेगा। अगर हमारे अंदर विकृति नहीं होगी, हमारी दृष्टि अगर साफ है, तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकेगा। तो बहुत माया धोखा देती है, विकर्म कर देती हो, काम महाशत्रु है, उसमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं, ज्यादा जोर किसके ऊपर देते हैं? काम महाशत्रु। ज्ञान से या तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, या तो फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। सारे जंगल की लकड़ियों को कलम बना दो तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। या तो सिर्फ कहते अलग को याद करो, याद करना किसको कहा जाता है? ये जानते थोड़े ही हैं कि याद क्या चीज है। कलयुग को, कलयुग से हमको मुक्ति धाम सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख, देखते हो बारिश में कितने मकान गिरते हैं और कितने डूब जाते हैं। यहाँ कौन सी बरसात है? यहाँ है फिर ज्ञान बरसात। ज्ञान बरसात में नदियां भी फिर उछाल मारती हैं, उनमें भी बाढ़ आ जाती है तो बोरम बोर कर देती है। बजाय खेती अच्छी बने, लोगों को सुख हो, बजाय सुखदाई बनने के क्या करती है? दुखदाई और हो जाती है। बरसात आदि नेचुरल कैलेमिटीज भी सब होंगी। ये बाढ़ आ जाना, चारों तरफ आग ही आग जलना, भूकंप होना, यानी धरती का हिलना, ये सब होगा। ये सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए हैं वो जगेंगे कैसे? कैसे कुंभकर्ण जब सोता था तो कैसे जगाया जाता था? बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते थे उसके कानों के पास। तो यहाँ क्या बजेगा? ज्ञान के बड़े बड़े एटम बम फूटेंगे। सबसे बड़ा बम कौन सा बताया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम जब फूटता है तो कुंभकर्णों की नींद है वो हम अभी तो हम समझ रहे थे ये कौन सा निकल पड़ा। तो बाप मुरलियों में कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। मुरलियों में ये बोल किसके हैं? बाप के ही बोल हैं। विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे? फिर तो कोई पुरुषार्थ करने का टाइम रहेगा नहीं, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता है, बम से भी फेंकते हैं क्या? परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार की, ये तो विदेशों में होता है सब। क्या बम फटना, धरती का हिलना, तूफान आ जाना, बरसात आदि पड़ना, ये नेचुरल कैलेमिटीज तो वहां भी होंगी तो यहाँ भी होंगी। यहाँ बम का सिर्फ असर नहीं आवेगा, नेचुरल कैलेमिटीज तो जरूर होंगी लेकिन एडिशन किस बात की है? सिविल वार की। रक्त की नदियां गाई हुई है, सिविल वार माना अंदरूनी युद्ध है। जैसे 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में सिविल वार शुरू हुई, महावारी महाभारत है, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जमुना के कंठे पर जय जयकार हुई, तो बाहर की दुनिया में उस समय 76 में क्या चल रहा था? इमरजेंसी चल रही थी कि नहीं? हाँ, बाहर की दुनिया में कोई नारायण प्रत्यक्ष हो रहा था नहीं? जयप्रकाश नारायण था कि नहीं? एजिटेशन का मुखिया। तो ब्राह्मण की दुनिया में भी कोई जयप्रकाश नारायण नरसिंह नारायण बनने वाला वो मुखिया था, और उसका विशेष सहयोगी कौन था? कृष्ण मुरारी देसाई। बाहर की दुनिया में भी था तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी था। इंदिरा गांधी भी थी जिनके अंदर में डर भरा हुआ था, नाम क्या रख दिया?
اندرا گاندھی. گند ہوگی تو ڈر ضرور ہوگا, اگر دل صاف ہوگا تو کسی سے ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں. تو رت کی ندیاں گائی ہوئی ہیں بھارت میں, یہ ایڈیشن ہے. کون سے رت کی؟ جیسے اس استھول شریر میں وہ استھول خون بہتا ہے 16,000 دھمنیوں میں, ایسے ہی براہمنوں کے پریوار میں بھی کوئی 16,000 چیتنیہ دھمنیاں ہیں, گوپ گوپیاں. ان گوپ گوپیوں کے اندر کیا رہے گا؟ سنکلپوں کا خون ہوگا. کیا جب لڑائی ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دو سیناؤں کی لڑائی ہوتی ہے تو خون کی ندیاں بہتی ہیں. تو یہاں بھی یہ ندھا ہوا ہے براہمنوں کی دنیا میں, یہ سنکلپوں کا خون کھار خون نار کیل ہونا ہے. جو پاور فل ہوں گے وہ اپنے کو کنٹرول کیے رہیں گے, سنکلپوں کا خون زیادہ بہے گا نہیں ان کا, ان کے اوپر اثر بھی نہیں پڑے گا. اور جو کمزور ہوں گے ان کا سارا خون بہ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ آج فیل ہو جائے. یہاں مارا ماری ہوتی ہے, ایک دو پر کیس کرتے رہتے, کیس وغیرہ بھی ہوگا. تم مرضی ہم پہلے سے ہی بول رکھا ہے, تم بچے کیس کو ہائی کورٹ میں لے جاویں گے, چھوٹے موٹے کورٹ کیس سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا. چھوٹے موٹے کورٹ جو ہیں وہ تو پیسے لے کر کے اور چھوڑ دیتے ہیں. تو کیس کرتے رہتے ہیں تو لڑیں گے بھی ضرور, کیونکہ سب ہیں نردھن کے. لڑیں گے کون؟ جو نردھن کے ہیں وہ لڑائی لڑتے ہیں. جن کا دلی دھوڑی بیٹھا ہوگا, کوئی عورتیں ہوتی ہیں جن کا دھنی دھوری نہیں ہوتا ہے تو بچوں کے بچاؤ کے لیے خود باہر آ جاتی میدان, اور کوئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں لاج شرم آیا رہتی ہے. جب گھر والا لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے, بچاؤ کرنے کے لیے تیار ہے, تو ان کو باہر نکلنے کی درکار نہیں. تو سب نردھن کے ہیں, تم ہو دھنی کے. کوئی لڑائی آدھی تم کو نہیں کرنی کیونکہ تم دھنی کے ہو. برہمن بننے سے تم دھنی کے بن گئے. کیا بننے سے دھنی کے بن گئے؟ مانے برہما کی اولاد پریکٹیکل میں بننے سے تم دھنی کے بن گئے. ہاں جب دھنی دھوری نہیں ہوگا تو نردھن کے ہو گئے, اور جن کا دھنی دھوری دکھائی پڑتا ہے آنکھوں سے حاضر ناظر ہوگا تو دھنی کے ہوئے, انہیں لڑائی لڑنے کی کیا درکار؟ دھنی باپ کو یا پتی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا؟ شیو بابا تو پتیوں کا پتی ہے, باپوں کا باپ ہے. سگائی ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم ایسے پتی کے ساتھ کب ملیں. یہ ہوئی انگیجمنٹ کی بات. کیا انگیجمنٹ؟ جب اسمرتی روپی ٹیکا چڑھ جاتا ہے, شادی ہونے سے پہلے ٹیکا چڑھایا جاتا ہے نا, تو کون سا ٹیکا؟ اسمرتی روپی تلک جب لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ اب ہم آپ سے کب ملیں گے, ارتھات پتی کے ساتھ کب ملیں گے؟ کشش ہو جاتی ہے, کھینچ ہو جاتی ہے, بنا ملے رہ نہیں سکتے. بچے کہتے ہیں بابا ہماری تو آپ سے سگائی ہو گئی, انگیجمنٹ ہو گیا گھر بیٹھے بیٹھے. برہمن تو ہوتا ہے بیچ میں, نہیں ہوتا ہے. یہ ہے نوین برہمن, پرانا نہیں ہے. جیسے نئی دنیا میں نیو مین سے نئی دنیا شروع ہوگی, ہاں پرانے مین سے دنیا شروع نہیں ہوگی. اس کی ایکٹیویٹی ضرور کوئی ایسی ہوگی جو دنیا میں کسی منشی ماتے کی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہوئی ہو, اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ نوین, نیو مین. اب باپ سے ہم کیسے ملے ہیں؟ کوئی تو سچ سچ لکھتے ہیں, کوئی تو بہت سی باتیں سچائی سے لکھتے نہیں ہیں کہ بابا ہم سے یہ بھول ہو گئی, کھما کرو. اگر کوئی وکار میں گرا تو بدھی میں دھارنا نہیں ہو سکتی. وہ کتنا بھی سنتے رہیں گیان لیکن ان کی بدھی میں دھارنا نہیں ہوگی. بابا کہتے ہیں تم ایسی کئی بھول کریں گے تو چٹنا چور ہو جائیں گے. کیا
तुम कैसे समझते हो कि हम तो बहुत अच्छे कट्टे हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं तुम चकनाचूर हो जाएंगे, तुमको हम गोरा बनाने के लिए आया हूँ, तुम फिर काला हूँ कैसे करते हो। वन स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पा लेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो पाई पैसे के पद वाले भी राजधानी में चाहिए। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं, कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने के लिए आए हो, बाप तो जन्म जन्मांतर के लिए राजा ही देने के लिए आया है किस जन्म की, और तुम ये पद पाने के लिए आए हो, ऐसे कहेंगे। कौन कहेगी? कहने वाले कोई तो कहेंगे, बाप इतना ऊंचे बने तब बात है, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप इतना ऊंचे बने, कितना ऊंचे, तो हम बच्चे क्या बने हैं? विश्व महाराज के बच्चे भी क्या बनेंगे, विश्व के महाराजा ही बनने चाहिए ना। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, वाह भाई कितनी लज्जा की बात है। बिचारे में तुमको साफ साक्षात्कार होंगे, कौन दास दासी बनेंगे, कौन प्रजापद पाएंगे, कौन ऊंच पद पाएंगे, कौन राजा बनेंगे, कौन महाराजा बनेंगे, कौन चांडाल बनेंगे, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फिर बहुत पछताएंगे, क्या जब साक्षात्कार हो जाएगा फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, पछताएंगे ना हमने ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचारी में रहते तो विकारी सब उनको माथा टेकते, पवित्रता का ईमान होता है, इसकी तकदीर में नहीं है तो बाप आकर के पढ़ाते भी हैं, फिर भी गफलत करते रहते हैं। अम्मा आके पढ़ाए या गफलत करते रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप बाप बन करके आए और फिर भी गफलत करते रहे तो क्या होगा? याद ही नहीं है, नहीं करते हैं, बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है वृक्षपति की दशा, वृक्षपति भी है तो बृहस्पति भी है, बृहस्त माना बड़े से बड़ा पति, पतियों का भी पति है, इससे ऊंच दशा और कोई भी नहीं होती। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है नौ ग्रहों में? बृहस्पति। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, उन नौ ग्रहों में भी बृहस्पति सबसे बड़ा माना जाता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं। तो बहुत भारी है, वजनी है, उसकी दशा तुम्हारे ऊपर है, इससे ऊंची दशा और कोई होती नहीं। कोई बड़े ग्रह के आकर्षण में कोई आ जाए तो छोटे मोटे ग्रह उसके ऊपर असर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो तुम्हारे ऊपर किसकी दशा हुई? बृहस्पति की दशा हुई। ये सबसे ऊंची दशा है, दशाएं चक्कर लगाती रहती है।
तुम बच्चों पर क्या 84 जन्म है ना, तो कभी किसी ग्रह के चक्कर में आते हो, कभी किसी ग्रह के चक्कर में आते हो। एक चंद्रमा ऐसा है जो पृथ्वी के ही चक्कर में आता रहता है, बाकी सब सितारे अपना अपना स्थान बदलते हैं। एक ध्रुव तारा ऐसा है जो किसी के चक्कर नहीं करता। अच्छा बीच में बच्चों का माता पिता का यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों को, जिर्गवानी बच्चों को उसकी भी नमस्ते नहीं, देहाभिमानी के नगर में रहने वाले बच्चों को वो भी नमन नहीं करता। क्यों? वो तो सबका बाप है, सुप्रीम सोल तो ज्योतिबिंदु सभी का।